श्रीमद्भागवतम भागवत सार की श्रृंखला में आज तीसरा अध्याय पर चर्चा होगी। तीसरे अध्याय में श्रीमद्भागवतम का परिभाषा सूत्र दिया गया है। परिभाषा सूत्र अर्थात किसी ग्रंथ का वो श्लोक जो उस ग्रंथ के विषय को कहे। तो परिभाषा सूत्र यहाँ इस बोर्ड पर है, आइए इसको पढ़ें और फिर तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोके मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृदयन्ति युगे युगे। में से कोई एक भक्त दोहराएं। ये सब च तथा अंश पूर्णांश कला पूर्णांश के भी अंश पुंसः परम पुरुष के कृष्णः भगवान कृष्ण तु लेकिन भगवान भगवान स्वयं साक्षात् इंद्रारी इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम सारे लोक को मृडयंती सुरक्षा प्रदान करते हैं युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा उपयुक्त सारे उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश हैं या अंशांश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत के तीसरे अध्याय पर चर्चा करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को कहेंगे, सभी लोग एक साथ मिलकर इसको कहेंगे।
सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोच तकर हान मुंच कदाचिन्म प्रेम नारद कंठयो स्फुर।
हरे कृष्णा। तो दो अध्यायों पर इस श्रृंखला में अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद का। अब तक पहले अध्याय में प्रश्न पूछे शौनक आदि ऋषियों ने, फिर दूसरे अध्याय में चार प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं सूत गोस्वामी। लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, श्रेयस्कर कार्य क्या है, भगवान क्यों जन्म लेते हैं, शास्त्रों का सार क्या है और भगवान के कार्यों का वर्णन अब तक हो चुका है। भगवान जन्म इसलिए लेते हैं, अंतिम श्लोक में दूसरे अध्याय के बताया गया, ताकि जीवों को पुनः वापस धाम में ले जा सकें। और फिर अब सूत गोस्वामी अवतारों का वर्णन करेंगे, अलग अलग अवतारों का। शुरुआत करते हैं वो पहले श्लोक से लेकर पांचवें श्लोक तक, वो पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं। कैसे भगवान जब इस सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। दरअसल सृष्टि की रचना दो स्तरों पर होती है, एक जिसे सर्ग कहते हैं जो महाविष्णु के स्तर पर होती है, जिसमें भौतिक प्रकृति के 16 पदार्थों को लाया जाता है और फिर उनसे सृष्टि करके ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी फिर जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि ये विसर्ग कहलाती है, द्वितीय स्तर की सृष्टि। तो महाविष्णु का वर्णन किया, फिर गर्भोदक्षायी विष्णु का वर्णन करते हैं कि कैसे वही विष्णु गर्भोदक सागर में विराजमान हैं, निवास करते हैं, लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती हैं, ब्रह्मा जी उनकी नाभि से जो कमल निकलता है उस पर प्रकट होते हैं। तो ये वर्णन करने के बाद फिर वो कहते हैं कि इन गर्भोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार आते हैं, अर्थात इनके द्वारा। पहले ही वो कह चुके हैं कि भगवान विस्तार करते हैं महाविष्णु और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर इनसे अलग अलग अवतार आए। तो छठे श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक उन्होंने 22 अवतारों का वर्णन किया। प्रारंभ किया छठे श्लोक से और फिर कहते गए बहुत से अवतार, 22 अवतारों का वर्णन उन्होंने किया। तो सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया 4 कुमारों का। तो इन अवतारों में जो सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इन अवतारों में शक्त्यावेश अवतार भी हैं, लीला अवतार भी हैं, मनवंतर अवतार भी हैं। इन सारों को मिलाकर उन्होंने वर्णन किया। अवतारों की श्रेणियां 6 प्रमुख श्रेणियां होती हैं अवतारों की, जिनमें सबसे पहले पुरुष अवतार, जो 3 पुरुष हैं पुरुष अवतार, अर्थात महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और फिर गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं इसीलिए वे रजोगुण के अधिष्ठाता हैं। शिव जी संहार करते हैं इसीलिए वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, और विष्णु पालन करते हैं इसीलिए वो सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं। तो इन्हें गुण अवतार कहते हैं। तो पुरुष अवतार, फिर गुण अवतार, और फिर गुण अवतारों के बाद लीला अवतार। भगवान लीलाएं करते हैं, असंख्य अवतार हैं, असंख्य लीलाएं हैं भगवान की। फिर मनवंतर अवतार, हरेक मनु के समय में, जिसको मनवंतर कहते हैं, भगवान अपना एक अवतार लेते हैं, तो इसे मनवंतर अवतार कहते हैं। और फिर युग अवतार, युग अवतार अर्थात वो अवतार जो युग धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और छठी श्रेणी है शक्त्यावेश अवतार, किसी जीव को भगवान शक्ति प्रदान कर देते हैं। वो विष्णु नहीं है, वो भगवान नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के द्वारा शक्ति उसको प्राप्त हो गई है, इसीलिए वो शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश करा दें, उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। इनमें भी 2 श्रेणी होती हैं, एक जो विष्णु तत्व हो सकते हैं अनंत इत्यादि, या फिर जीव। साधारणतः किसी जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। तो फिर अवतारों को कहना प्रारंभ किया, सबसे पहले 4 कुमारों का वर्णन किया, कैसे 4 कुमार प्रकट हुए और उन्हें इस जगत से कोई मोह नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी। चारों ने प्रकट होकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाया, लेकिन आगे चलकर इन्होंने प्रहलाद इत्यादि को ज्ञान भी प्राप्त किया दिया, ऐसा वर्णन किया गया है। तो फिर 4 कुमारों ने बहुत जगह ज्ञान दिया, नारद मुनि को ज्ञान दिया। हम लोग भागवत के महात्म्य में सुन रहे थे कि 4 कुमार जब भागवत कथा कह रहे थे, नारद मुनि वहां पर आए तो नारद मुनि को भी उन्होंने बतलाया। तो इनको ज्ञान की शक्ति प्रदान है, इसीलिए ये ज्ञान के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो पहला वर्णन 4 कुमारों का कर दिया। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया वराहदेव का। ये समय था जब ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि आप सृष्टि कीजिए, पृथ्वी को भर दीजिए जीवों से, और उस समय मनु ढूंढने गए तो पृथ्वी ही नहीं मिली। मनु ने कहा, अरे पृथ्वी कहाँ गई, कहाँ पर करूँ? फिर से आए ब्रह्मा जी के पास कि मैं सृष्टि करूँ कहाँ? तो उस समय ब्रह्मा जी बड़े विचलित हो गए, ये क्या हुआ? और उस समय उनकी नसिकाओं से एक बहुत छोटा मटर के दाने के बराबर जीव प्रकट हुआ, और देखते ही देखते वो बहुत विशाल रूप वराह भगवान उन्होंने ले लिया, और फिर उन्होंने जाकर पृथ्वी को रक्षा की। तो दूसरा ये अवतार वर्णन करते हैं वराहदेव का। तीसरे अवतार की श्रेणी में वर्णन करते हैं नारद मुनि का, कि नारद मुनि उनको भक्ति की शक्ति प्रदान है, इसीलिए वो बहुत जगहों पर जाकर भक्ति का प्रचार करते हैं। तो तीसरे अवतार, ये अभी हम लोग इन अवतारों को केवल संक्षेप में सुन रहे हैं, एक एक वाक्य में उनके कार्यों को। आगे जैसे जैसे भागवत बढ़ेगी, इन सब के विस्तार से हम कथाएं सुनेंगे। तो नारद मुनि का वर्णन किया, फिर चौथे अवतार के रूप में नर नारायण ऋषि का वर्णन किया। नर नारायण ऋषि जिन्होंने तपस्या की शक्ति को प्रकट किया, बद्रिकाश्रम में आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। तो चौथे अवतार के रूप में उन्होंने वर्णन किया। पांचवा अवतार वो वर्णन करते हैं कर्दम मुनि के पुत्र कपिल, भगवान कपिल का। कर्दम मुनि ने बहुत कड़ी तपस्या की, प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए। कर्दम मुनि से पूछा क्या चाहिए, तो कर्दम मुनि ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ, एक सुंदर स्त्री चाहिए, लेकिन आपकी सेवा के लिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दो दिन बाद ही स्वयं मनु आएंगे, आपको अपनी पुत्री देवहूति देंगे। तो फिर उनके देवहूति, माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। तो ये पांचवा अवतार। छठे अवतार का वर्णन वो कर रहे हैं दत्तात्रेय, जो विष्णु के अवतार हैं, माता अनुसुईया से जिनका जन्म हुआ। ये कथा आगे आएगी कैसे माता अनुसुईया ने प्रार्थना की कि जो इस जगत को चलाने वाले हैं, जो इस जगत की रचना करते हैं, जो इस जगत का संहार करते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने कहा रे मैंने तो एक ही को बुलाया था भगवान को, ये कौन तीनों क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने प्रार्थना ऐसी की थी, हम तीनों को पुकारा था। तो फिर तीनों को उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होइए। तो तीन पुत्र माता अनुसुईया के हुए, जिनमें से शिवजी के अंश हुए दुर्वासा मुनि, ब्रह्मा जी के अंश हुए सोम, और विष्णु के अंश हुए दत्तात्रेय। तो ऐसे ये छठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय का वर्णन करते हैं। सातवें अवतार के रूप में वो यज्ञ का वर्णन करते हैं, यज्ञ जो आए थे युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और फिर आठवें अवतार, इन सब का वर्णन आगे आएगा, इसीलिए विस्तार से सुनेंगे बाद में। आठवें अवतार के रूप में वो वर्णन करते हैं ऋषभ देव का। ऋषभ देव के बड़े विस्तार से वर्णन है भागवत में, अपने पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया, तो इसको भी हम लोग आगे सुनेंगे। तो ऋषभ देव का वर्णन आठवें अवतार में करते हैं। नौवे अवतार में पृथ्वी महाराज का वो वर्णन करते हैं। पृथ्वी महाराज कैसे वो प्रकट हुए, कैसे उन्होंने राज्य किया, ये भी शक्त्यावेश अवतार हैं। इनको राज्य करने की शक्ति भगवान ने प्रदान की थी। तो ऐसे पृथ्वी महाराज का वर्णन करते हैं। और फिर आगे दसवें अवतार में, दसवें ग्यारहवें बारहवें में जो वर्णन करते हैं आगे कुछ अवतार, वो ऐसे अवतार हैं जो जिन्होंने माता पिता को स्वीकार नहीं किया, ऐसे ही प्रकट हो गए, जैसे मत्स्य अवतार। तो दसवां अवतार वो वर्णन करते हैं मत्स्य अवतार। तो उन्होंने कोई माता पिता स्वीकार नहीं किए, मत्स्य आए, उन्होंने राजा सत्यव्रत की रक्षा की। ऐसे समय में जब प्रलय का जल, प्रलय पयोधि जले, तो ऐसे समय में उन्होंने उनकी रक्षा की। तो ये दसवां। ग्यारहवां कूर्म अवतार, कश्यप कहते हैं जिसको, कूर्म अवतार हुए ग्यारहवें। तो इनके भी कोई माता पिता नहीं है, कूर्म अवतार ऐसे ही प्रकट हुए, क्योंकि ये समय था जब समुद्र मंथन होना था, और समुद्र मंथन जब वो कर रहे थे तो जो पर्वत था जिससे वो कर रहे थे वो नीचे गिर रहा था। तो भगवान कछुए के रूप में आ गए और उन्होंने अपनी पीठ पर उसको धारण कर लिया, इतना विशाल पर्वत। और ऐसा लिखा गया है, सुत गोस्वामी समझाते हैं कि जब भगवान के पीठ पर उस पर्वत को, इतने भारी पर्वत को इधर उधर ऐसे करा जा रहा था, जोर से रगड़ा जा रहा था इतने भारी पर्वत को, तो भगवान को हल्की सी नींद आ रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद लग रहा था भगवान को। तब सुन रहे थे, एक बार एक सन्यासी कह रहे थे कि अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसकी पीठ पे बहुत बड़ा पत्थर रखना चाहिए और रखकर उसको जोर जोर से घुमाना चाहिए, और अगर उसको नींद आ जाए तब उसको भगवान मानना चाहिए, उसकी तो हड्डियां टूट जाएंगी, नींद कहाँ से आए। तो ऐसे अवतार हुए भगवान के, कश्यप या फिर कूर्म अवतार जिन्हें कहते हैं। तो ये 11वें थे, और 12वें अवतार भी इसी लीला में आए, वह है धन्वंतरी। समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समय धन्वंतरी ये अमृत लेकर बाहर आए, ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। और उसी लीला में और एक अवतार हुए, तो ये सारे अवतारों ने माता पिता स्वीकार नहीं किए। 10वें से लेकर, मत्स्य से लेकर, मत्स्य, कूर्म और धन्वंतरी, और उसके बाद मोहिनी अवतार। जब अमृत आ गया, अमृत दिया, तो असुर लेकर भाग लिए, तो सारे देवता कहने, अरे ये क्या हो गया, भगवान की ओर देखने लगे, भगवान वहाँ खड़े थे। तो फिर भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं करो, और फिर उन्होंने बहुत सुंदर रूप लिया, मोहिनी अवतार। तो ये मोहिनी अवतार, ये 13वां अवतार हुआ। 14वां अवतार हुआ नरसिंह देव, इन्होंने भी माता पिता स्वीकार नहीं किए, खम्बे को फाड़ कर आ गए। तो ये 14वां अवतार था। नरसिंह देव की कथा हम लोग कई बार सुन चुके हैं, आगे फिर 7वें स्कंद में आएगी, इसीलिए इनको विस्तार से अब नहीं कहेंगे, इन किसी भी कथाओं को। तो और 15वां अवतार हुआ वामन देव, जिन्होंने माता पिता स्वीकार किए। अब माता पिता सब ने स्वीकार किए, केवल ये जो बीच की श्रेणी है इन्होंने नहीं किए। तो उन्होंने, वामन देव अवतार हुआ, बलि महाराज को धोखा दिया, धोखे से 3 पग भूमि मांगी और सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तो ये वामन अवतार 15वें हुए। 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का। परशुराम जी, जो हम लोग भी वर्णन सुन चुके हैं परशुराम जी का कई बार, तो परशुराम जी का 16वां अवतार हुआ। 17वां अवतार व्यासदेव, व्यासदेव जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा, सारे शास्त्रों को, पुराणों को लिखा, तो व्यासदेव भी भगवान के अवतार हैं। कभी कभी व्यासदेव कोई जीव हो सकते हैं, तब वो शक्त्यावेश श्रेणी में आते हैं, और कभी कभी वो स्वयं भगवान होते हैं। जब कोई योग्य जीव भगवान को नहीं मिलता तो स्वयं भगवान व्यासदेव हो जाते हैं। इस समय जो व्यासदेव हैं वो स्वयं नारायण हैं, इसका वर्णन पुराणों में किया गया है, वो कोई जीव नहीं है। लेकिन अन्य समयों पर किसी जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं शास्त्रों के संकलन की, उसे व्यास कहते हैं। व्यास पदवी है, नाम नहीं है। इस समय जो व्यासदेव हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, लेकिन व्यास पदवी है। तो हर समय जो भी व्यास होते हैं वो शास्त्रों का संकलन करते हैं, कभी जीव हो सकते हैं, कभी भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे ये 17वें अवतार के रूप में वर्णन किया। 18वां रूप वर्णन किया अवतार भगवान राम का, रामचंद्र जी का वर्णन उन्होंने किया कि रामचंद्र जी आए, उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की। 9वें स्कंद में जब हम लोग पहुँचेंगे तो रामचंद्र जी की लीलाओं को सुनेंगे। और फिर 19वें और 20वें अवतार के रूप में वो बलराम जी और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। और यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सूत गोस्वामी कहते हैं, हालांकि वो इनको श्रेणी में रख रहे हैं अवतार की, 19वें और 20वें अवतार, लेकिन बाकी जितने भी अवतार हुए उनमें उन्होंने भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब श्री कृष्ण के लिए उन्होंने कहना प्रारंभ किया तो कहा भगवान। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि यहाँ भगवान शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुत गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं कि वो अवतार नहीं, अवतारी हैं। लेकिन क्योंकि वो आए लीला करने, इसीलिए अवतर अवतीर्ण हुए, जो भी ऊपर से अपने धाम से नीचे आते हैं उनको कहते हैं अवतीर्ण होना, अवतरति इति अवतार, तो इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। तो 19वें और 20वें बलराम जी और कृष्ण हुए, और 21वां, अब 20 अवतार कहने के बाद सूत गोस्वामी अब भविष्यवाणी करने लगे, और उन्होंने कहा कि 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में आएंगे, क्योंकि जब ये भागवत कही गई तब बुद्ध अवतार नहीं हुआ था, अभी तो हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि बुद्ध आए, लेकिन सूत गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध आएंगे। तो बुद्ध अवतार का वर्णन वो करते हैं कि कैसे वो आएंगे और अहिंसा का प्रचार करेंगे, और फिर 22वें अवतार के रूप में वो और एक भविष्यवाणी करते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे। तो ऐसे 22 अवतारों का उन्होंने वर्णन किया। आचार्य 2 अवतारों को और जोड़ते हैं जिनमें जिनका वर्णन स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे 4 कुमार जब आए तो 4 कुमारों में ब्रह्मा जी से कई प्रश्न पूछे, जिज्ञासाएं की, जिसका उत्तर ब्रह्मा जी दे नहीं पाए, तो उनके उत्तर को देने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया जिसको हंस अवतार कहते हैं। तो हंस अवतार भगवान ने लिया इन 4 कुमारों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो वो 23वां वो भी माना जाता है, और 24वां अवतार माना जाता है हयग्रीव को। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, थोड़ा सा उन्हें नींद आ गई, तो जैसे ही झपकी लगी तो जितने शास्त्र थे वो एक असुर ने चुरा लिए, जिसका नाम था हयग्रीव, असुर का नाम भी हयग्रीव था। और फिर भगवान ने वैसा ही रूप लेकर वही नाम लेकर अवतार लिया और उसको मारा, और शास्त्र फिर से ब्रह्मा जी को प्रदान किए। तो इसलिए ऐसे 24 अवतार आचार्य कहते हैं कि इन में वर्णन किया गया है। तो अब 6 श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक उन्होंने वर्णन कर दिया अवतारों का, लेकिन सूत गोस्वामी ने सोचा कि अब कितने अवतारों का वर्णन करूं। तो वो कहते हैं कि जो अवतार हैं भगवान के, वो तो पानी में आने वाली, नदी में आने वाली लहरों की तरह हैं, कितने का वर्णन करूं। और फिर उन्होंने अवतारों का वर्णन कर दिया, कृष्ण का नाम ले लिया, तो ऐसा ना हो कि आगे आकर लोग ये सोचने लगे कि अरे कृष्ण तो एक अवतार हैं, देखो भागवत में कहा गया है। इसलिए उन्होंने ये 28वां श्लोक, जिसे परिभाषा सूत्र कहते हैं, परिभाषा अर्थात ये सारे ग्रंथ की परिभाषा एक श्लोक में, ग्रंथ का मूल विषय एक श्लोक में, और तब उन्होंने ये श्लोक कहा। एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो वो कहते हैं कि एते जितने भी मैंने अभी तक वर्णन किए हैं, जिनमें एक श्लोक में इसके पहले वो ये भी कहते हैं कि मनु हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, शक्तिशाली ऋषि मुनि, वो सब भी अवतारों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जो भी मैंने अभी तक वर्णन किया, एते च अंश कला, या तो वो अंश हैं या अंशों के अंश हैं। एते चंश कला च एते चांश कला पुंसम, पुंसम मतलब परम भगवान के, ये जितने भी मैंने वर्णन किया ये सब परम भगवान के केवल अंश या अंशों के अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो अवतार नहीं हैं, वो अवतारी हैं। बहुत स्पष्ट कर रहे हैं सूत गोस्वामी इसमें, कहीं भ्रमित नहीं हो जाइए कि कृष्ण भी एक अवतार हैं, नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्पष्ट कृष्ण कृष्ण नाम लिया उन्होंने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। जब भी असुर, इंद्रारी मतलब इंद्र के जो शत्रु हैं, अरी यानी शत्रु, इंद्रारी यानी देवताओं के जो शत्रु हैं अर्थात असुर, तो जब उनका उत्पाद बढ़ जाता है तो उनका नाश करने के लिए, उनसे जब वो व्याकुल हो जाते हैं लोग तो उनका नाश करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं, वही कृष्ण आते हैं। तो ये परिभाषा सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि सारे भागवतम का उद्देश्य ही है कृष्ण का गुणगान, कृष्ण को परम भगवान स्थापित करना। बाकी अन्य शास्त्रों में सीधे इनको स्थापित नहीं किया गया, इसीलिए व्यास देव का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इसकी चर्चा हम लोग अगले दो अध्यायों में करेंगे। और इस भागवतम का मूल उद्देश्य, मूल विषय, परिभाषा, सार ये श्लोक है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वैसे श्रीमद् भागवत क्यों, सारे वैदिक शास्त्रों का ये परिभाषा सूत्र होना चाहिए क्योंकि सारे वेदों का सार क्या है, कृष्ण। वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान ही वेदों की रचना करते हैं और उनमें जानने योग्य केवल भगवान है। तो इसीलिए ऐसे इन्होंने ये 28वां श्लोक कहा, 28वां और फिर 29वें श्लोक में भी ये वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं का, भगवान का। ये भी कहते हैं सुत गोस्वामी कि जो भी मैंने जितने अवतार बताए हैं, अगर जो सुबह और शाम, प्रातः सां संध्या, प्रातः के समय और संध्या के समय सायकाल में, अगर कोई इनका उच्चारण, इनका वर्णन सुनता है या बोलता है तो निश्चित मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसे सुत गोस्वामी बोलकर फिर आगे के श्लोक 30 श्लोक से लेकर करीब 39 श्लोक तक भगवान के विराट रूप और जीव के रूप को ये काल्पनिक बताते हैं, क्योंकि वर्णन कर रहे हैं अवतारों का, रूपों का। तो फिर उन्होंने वर्णन किया कि लोग भ्रमित हो जाते हैं भगवान के भौतिक रूप को देखकर, जो विराट रूप है वो सत्य नहीं है, वो कल्पना है। और जैसे जीव का शरीर या जीव का रूप ये कल्पना है, ये सत्य नहीं है। कल्पना अर्थात हम कल्पना कर लेते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये कल्पना है, हम हैं नहीं, क्योंकि हम क्या हैं, जीव हैं। तो उसका वर्णन इन श्लोकों में करते हैं कि उदाहरण देते हैं कि जैसे हवा बादलों को लेकर जाती है या धूल को लेकर जाती है, तो कोई मूर्ख व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये जो सारा वातावरण है ये बादलों से भर गया है, या मिट्टी ये हवा मटमैली हो गई है। हवा को कुछ नहीं होता, हवा तो केवल उस मिट्टी को लेके जा रही है, लेकिन दूषण उसमें नहीं आता है, देखने वाले को लगता है। इसी तरह कहते हैं कि ये जो शरीर हम लोग लेते हैं, आत्मा जो शरीरों को धारण करती है, दरअसल ये जो शरीर हैं ये कल्पना है इस जगत में हमारी, कि हम ये हैं, हम वो हैं, सत्य में हम जीव हैं। तो इसका वर्णन करीब 7-8 श्लोकों में वो करते हैं। और फिर आगे वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत का। वैसे अगर हम लोग देखें तो इस अध्याय में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत है। अंतिम जो विभाग है उसकी चर्चा तो करेंगे ही, उससे पहले अभी तक जो चर्चा की है, जैसे हमने पहला विभाग देखा जहाँ पहले से पांचवें अध्याय तक, पांचवें श्लोक तक पुरुष अवतारों का या सृष्टि का वर्णन किया गया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान ये सृष्टि की रचना क्यों करते हैं। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं हमारी जो आकांक्षाएं हैं, गलत आकांक्षाएं, भोग करने की आकांक्षा, ईश्वर बनने की आकांक्षा, उसको पूरा करने के लिए भगवान ये भौतिक जगत बनाते हैं। नहीं तो भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं हैं उनको वो पूरा करते हैं। ठीक है, आप भगवान बनना चाहते हो, आप ईश्वर बनना चाहते हो, नियंत्रक बनना चाहते हो, भोक्ता बनना चाहते हो, आध्यात्मिक जगत में हो नहीं सकता। वहाँ एक ही भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वैसे यहाँ भी एक ही भोक्ता है, लेकिन हम लोग यहाँ आके अपने आप को भोक्ता मानते हैं, नकली भोक्ता। नकल होती है ना, डुप्लीकेट। कभी कुछ लोग ओरिजिनल बनाते हैं, फिर उसका कोई डुप्लीकेट बना देता है, तो डुप्लीकेट की कोई वैल्यू नहीं, ओरिजिनल की वैल्यू होती है। जैसे एक कार है, वो कार होती है लेकिन बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दिया जाता है कार का, तो बच्चा सोचता है यस मेरी कार है, आप बैठ जाओ उसमें इत्यादि, वो खेलता। उस कार का कोई उपयोग नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह ये जो जगत है, यहाँ पर हम लोग जो रहते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। हम लोग भोक्ता नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इस जगत की रचना की। और इस श्लोक में वर्णन किया गया कृष्ण का, कि कृष्ण ही सारी चीज़ों के स्रोत हैं, सब कुछ उनसे आता है, सारे अवतार उनसे आते हैं। इसीलिए कहा गया एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर जब आत्मा इत्यादि का वर्णन करते हैं, हमारे जो शरीर हैं, हमारे जो विराट रूप जिसको हम लोग देखें, विराट रूप अर्थात ये सब पेड़ वगैरह, ऐसा कहा गया ये भगवान का विराट रूप है। ये जो पर्वत हैं ये भगवान की हड्डियों के समान हैं, ये जो पेड़ हैं ये भगवान के रोएं के समान हैं इत्यादि। तो ये कल्पना है, काल्पनिक है। तो इसी तरह जब ये हमारा जो भौतिक अस्तित्व है ये भी काल्पनिक है, असली अस्तित्व नहीं है, सच्चा अस्तित्व नहीं है। सच्चा अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में है, और उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़कर। एक प्रामाणिक व्यक्ति से जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं रोज, नित्यम भागवत सेवया, जब रोज श्रवण करते हैं, तब हम बड़ी आसानी से इस माया के परे जा सकते हैं। तो अब 40वें श्लोक से गुणगान होगा श्रीमद् भागवतम का। ये जरा बोर्ड घुमा दीजिए कोई, इसको थोड़ा। तो अब 40वें श्लोक से वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम का गुणगान, और इसी में आगे वो छठे प्रश्न का उत्तर भी देंगे, अंतिम प्रश्न का, कि जो धर्म के सिद्धांत हैं, धर्म ने भगवान के चले जाने के बाद धर्म ने कहाँ पर शरण ली। तो वो अब 40 से लेकर 44 श्लोकों तक, जो अंतिम चार श्लोक हैं, उसमें चार पांच श्लोकों में भागवतम का गुणगान करेंगे। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं, कृपया दोहराइए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान ऋषि निश्रेयासाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये जो भागवत है, इदम ये भागवत, भागवत अर्थात भागवतम का अर्थ क्या है यहाँ पर, इदं भागवतम ऐसा ग्रंथ जो भगवत तत्व के लीलाओं को या वर्णन को बताता है, उसे भागवतम कहते हैं। तो इदं भागवतम, भागवतम मतलब वो ग्रंथ जो भगवान के या भगवत तत्व को समझाए, उनके लीलाओं को, उनके गुणों को, उनके कार्यों को। तो इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म सम्मितम मतलब भगवान के अलग अलग अवतारों को बताता है। उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक ये भगवान का एक नाम है। चरितम, चरितम मतलब उनके कार्यों को। तो ये भगवान के अलग अलग अवतारों को, भगवान के कार्यों को, इन सब को बताता है। इन सब को व्यास देव ने एक सूत्र, एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और ये लोगों के लाभ के लिए है, श्रेय के लिए है। तो अब भागवतम का वर्णन वो करते हैं कि किस तरह भागवतम में ही, भागवतम में सब कुछ दिया गया है, सारा धर्म भागवत में है। और फिर वो कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक जो छठे प्रश्न का उत्तर माना जाता है, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। प्रश्न किया था शौनकादि ऋषियों ने कि श्री कृष्ण अपने धाम चले गए और फिर धर्म ने किसका आश्रय लिया, तो वो कहते कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कृष्ण चले गए उनके साथ, मान लीजिए धर्म ज्ञान सब चला गया है, लेकिन अपने आप को वो इस भागवतम में छोड़कर चले गए हैं। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश, वो जानते थे कि इस कलयुग में बहुत सारे दोष होंगे तो कैसे लोग छूटेंगे, इसीलिए इस भागवत में अपने आप को रख कर चले गए हैं। दूसरी दृष्टि में, दूसरे शब्दों में, भागवत ये भगवान से अभिन्न है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भागवत की पूजा करनी चाहिए, भागवतम की, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है भगवान से, वही रूप है। अगर हम भागवतम का वर्णन करें तो आचार्यों ने कई अलग अलग तरह से बतलाया है, जैसे प्रथम दो स्कंद भगवान के चरण कमल माने जाते हैं, फिर जैसे जैसे आगे भागवत बढ़ता है वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों का वर्णन किया गया है, और अंततः दसवें स्कंद को भगवान का मुखारविंद कहा गया है, और जो उसमें पांच अध्याय हैं रासलीला इत्यादि, तो वे भगवान की मुस्कान माने गए हैं। तो ऐसे ही भगवान के रूप को प्रकट किया है, तो हमें भागवत को इस तरह समझना चाहिए कि भागवत भगवान से अभिन्न है, इसीलिए इसकी पूजा होनी चाहिए। भागवतम की पूजा होती है, भागवतम की आरती होती है, भगवान की तरह ही इसकी पूजा करनी चाहिए। और भागवतम की सबसे बड़ी पूजा क्या है, आरती इत्यादि करना तो ठीक है, भागवत को समझना, श्रीमद् भागवतम का पठन श्रवण और उस पर चिंतन मनन, ये भागवतम की सेवा है, ये भागवतम की पूजा है। भागवतम की पूजा भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करके, भागवतम की पूजा भागवत के श्लोकों को समझकर, भागवतम की पूजा भागवतम के सार श्री कृष्ण की भक्ति करके होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि हम सबको भागवतम की पूजा करनी चाहिए, रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, कहीं भी हों हम लोग, हमें भागवतम रोज सुनना और पढ़ना चाहिए। और इसी से जो धर्म ज्ञान आदि भी श्री कृष्ण के साथ चले गए हैं, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर हैं इसीलिए धर्म ज्ञान आदि भी सब प्रकट होगा। अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य स्वयं प्रकट होगा, इसीलिए हमें कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस भक्ति के मार्ग में लगे रहें, आचार्यों के बताए हुए शिक्षाओं पर चलते रहें। तो इस अध्याय का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो मूल भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहते हैं, कभी शक्त्यावेश अवतार के रूप में, कभी वे लीला अवतारों में, कभी मनवंतर अवतारों में, युग अवतारों में, लेकिन भगवान हमेशा प्रकट होते रहते हैं ताकि वे जीवों को पुनः आकर्षित कर सकें, उन जीवों को जो अपने आप को एक काल्पनिक रूप में बांध कर रखे हुए हैं, ऐसे जीवों को पुनः भगवान के धाम ले जाने के लिए भगवान बारंबार प्रकट होते हैं। और जब वो प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं होते हैं तो भी ग्रंथ के रूप में, नाम के रूप में हमारे सामने रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।